सात भाषा, काव्य की भाषा में और गद्य की भाषा में अंतर होता है, क्योंकि दोनों की अभिव्यंजना पद्धतियों में अंतर होता है। काव्य की भाषा का प्रयोग मन की भावात्मकता पर आधारित है, तो गद्य की भाषा मन की दूसरी स्थिति पर आश्रित है। काव्यात्मक अभिव्यक्ति के समय मन की एकतानता अत्यधिक घनीभूत रहती है और गद्यात्मक अभिव्यक्ति के अवसर पर वह प्रसरणशील दिखाई देती है। पहली अवस्था में मन को संश्लेषणात्मक कहा जा सकता है, तो दूसरी अवस्था में उसे विश्लेषणात्मक की संज्ञा दी जाती है। रचना प्रक्रिया की अवधि में गद्यात्मक भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमानुवर्तिनी और परंपराभुक्त होती है। भाव संकुल होने के कारण काव्य भाषा लोक भाषा का अतिक्रमण कर जाती है, उसमें अर्थ का कसाव अधिक आ जाता है। इसलिए काव्य भाषा को आई ए रिचर्ड्स ने राग बोधात्मक इमोटिव कहा है। शब्द का बाह्याकार तथा उसका संगीत, उसकी अर्थवत्ता तथा उसकी सांकेतिकता कवि के लिए सब कुछ है। संस्कृत के आचार्यों ने शब्दों को अविभाज्य और एक माना है। शब्दों के अनुषंग एसोसिएशंस एक विशेष प्रकार के चाक्षुष बिंब की सर्जना करते हैं, जिससे भावों और विचारों के सम्मूर्तन में सहायता पहुंचती है। काव्यात्मक शब्दावली के लिए इतना ही अलम नहीं है, बल्कि उसे मानसिक तारों को स्पंदन पूर्ण भी बनाना पड़ता है। मेरी दृष्टि में इस तरह की शब्दावली में व्यंजना शक्ति की निहित आवश्यक है। काव्यात्मक भाषा की अपनी एक लय और शब्दावली होती है, जो युग के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। तुलसी सूर की ब्रजभाषा की लय और रीतिकालीन कवियों की ब्रजभाषा की लय में पर्याप्त अंतर है। उसी प्रकार रीतिकालीन ब्रजभाषा और भारतेंदु रत्नाकर की ब्रजभाषा की लय में काफी अंतर आ गया है। कभी कभी एक ही युग के दो कवियों की लय में बहुत पार्थक्य दिखाई देता है। उदाहरणार्थ भारतेंदु और रत्नाकर की भाषाओं की कलात्मक भिन्नता देखी जा सकती है। एक की लय आधुनिक है तो दूसरे की मध्यकालीन। ऐसा व्यक्तिगत विचारों के कारण होता है। यही बात शब्द आइडियम्स के संबंध में भी लागू है। लय और शब्द का संबंध तत्कालीन जीवन से होता है। इस अर्थ में कोई काव्य अपने युग का अतिक्रमण नहीं करता। अपने युग की शब्दावली और लय से पूर्णतया संबंध न होने पर कोई काव्य युग का प्रतिनिधित्व कर पाने में सर्वथा असमर्थ होता है। नई कविता अपने शब्दार्थ में युग जीवन को बद्ध करने में अनेक अर्थों में समर्थ है। इस दृष्टि से रीतिकाल का काव्य आदर्श कहा जा सकता है। अब हम पहले इन दोनों दृष्टियों से बिहारी की भाषा पर विचार करेंगे। इसके अनंतर भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियों तथा व्याकरणगत स्थिरता अस्थिरता पर विचार करना अधिक संगत होगा, क्योंकि काव्य भाषा के महत्व का आकलन इसी क्रम में करना अधिक मनोवैज्ञानिक है। भाषा की आत्मा का ज्ञान। ऊपर इस बात का संकेत किया जा चुका है कि गद्य में अर्थबोध का महत्व होता है, तो काव्य में रागबोध का। रागबोधात्मक शब्दों का चयन अधिक सतर्कता और भाषागत अधिकार की मांग करता है। रागबोधात्मक होने के लिए आवश्यक है कि कवि को यह मालूम हो कि अमुक शब्द अपने संदर्भ में औचित्यपूर्ण तथा व्यंजक है। व्यंजक होने के लिए एक हद तक शब्द को अनुषंग संयुक्त होना चाहिए, और यह तभी संभव है जब उसे शब्द की आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो। यहाँ कुछ उदाहरणों के आधार पर यह देख पड़ेगा कि बिहारी को शब्दों का कितना गहरा ज्ञान था। कृष्ण शब्द को ही लीजिए, इसके अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बिहारी ने किया है, जिनकी छानबीन करने पर लगता है कि उन संदर्भों में वे ही शब्द सर्वाधिक उपयुक्त थे। साजे मोहन मोह कौ मोही करत कुचैन दो, कच अंगुरी बिच दीठ दे चितवती नंद कुमार तीन, रतिपाली आली अनत आए बन मालीन चार, चटक भरेव नट मिल गयो अटक भटक बटमा पाँच, फेर डह डही कीजिए सूरत सींच घन श्याम। मोहन के मोहने में जो चमत्कार है वह अन्य में नहीं। मोहन मोहकता के गुण से स्वयं संपन्न हैं, इसलिए उनको मुग्ध करना अपेक्षाकृत अधिक कठिन है। नंद कुमार में जो कुमारत्व है वह चितए जाने के प्रसंग में अर्थ गर्भत्व से पूर्ण है। संकेत स्थल पर जो प्रायः वन नदी तट आदि हुआ करता है, न आकर वनमाली ही अन्यत्र रति का पालन कर सकते हैं। अटक भटक भटके प्रसंग में कोई कुशल नट ही गुमराह नायिका का उद्धार करने में समर्थ है। घनश्याम श्लेषत्वेन व्याख्या की मांग नहीं करता। कहीं कहीं बिहारी से इस औचित्य का निर्वाह नहीं हो पाया है। कौन भांति रही है बिरद अब देखिबी मुरार, बीधे मोसौ आई कै गीधे गीध ही तार। यहाँ पर मुरार शब्द को तारने की अशक्तता स्पष्ट है, पर इस तरह का स्खलन बिहारी में बहुत कम है। चित बिच बचत न हरत हठी, लालन दृघ पर जोर, सावधान के बट पराय जागत के चोर। यूं इसमें यह चमत्कार तो है ही कि सामान्यतः चोर और डाकू असावधान और सोए हुए मनुष्य का धन हरण करते हैं, पर बरजोर आंखें सावधान और जागते हुए का चित्त वित्त हरण करती हैं। किंतु यदि यहाँ बटपार की जगह चोर और चोर के स्थान पर बटपार रखते हैं तो शब्द प्रयोग अनौचित्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जागते हुए व्यक्ति की चोरी तो की जा सकती है, पर सावधान व्यक्ति का धन चुराना बहुत ही कठिन है। सावधान व्यक्ति का धनापहरण बलपूर्वक किया जा सकता है, जो चोर का नहीं डाकू का काम है। लोचन और लोइन समानार्थी हैं। इन दोनों शब्दों का प्रयोग सत्सई में हुआ है, पर भिन्न भिन्न संदर्भों में। लोइन में लावण्य भाव निहित है, वह लोचन में नहीं। शब्दों के इस वैशिष्ट्य और औचित्य का विचार व्यंजना और शब्द ध्वनि के प्रसंग में किया जा चुका है। मुहावरों की चर्चा भी अलग हो चुकी है, यहाँ पर उनका पृष्ठपोषण नहीं किया जाएगा। दास की षटविधि भाषा। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में लिखा है, भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारस्यो पय अति प्रकट जुहोय। ब्रज मागधि मिले अमर नाग जमन भाषान, सहज पारसी हूँ मिले षट विधि कवित बखान। अर्थात ब्रजभाषा में संस्कृत और फारसी का स्पष्ट मेल है, इनके साथ ही उसमें मागधी नाग कोष्ठ में अपभ्रंश यमन कोष्ठ में खड़ी बोली का सम्मिश्रण था। फारसी के मेल के संबंध में दास पर्याप्त सावधान प्रतीत हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सहज का प्रयोग किया है। सहज यहाँ पर क्रिया विशेषण है, उसका अर्थ यह है कि ब्रजभाषा में फारसी के वे ही शब्द गृहित होने चाहिए जो स्वाभाविक रूप से उसमें खप जाएं। अपनी दीर्घ परंपरा और भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रज भाषा का बहुत ही अधिक प्रचार और प्रसार हुआ, इसलिए वह स्वच्छंदता पूर्वक अनेक भाषाओं और बोलियों के शब्दों को ग्रहण करती गई। कोई भी विकसनशील भाषा अपनी भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण कर नए नए शब्दों को आत्मसात करती जाती है, यह उनकी समृद्धि और गतिशीलता का लक्षण है। जब कोई भाषा पर निश्चित हो जाती है तो उसके क्षेत्र से बाहर के कवि भी उसी भाषा में अपनी रचना करते हैं। ब्रजभाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसके फलस्वरूप उसमें बहुत सी बोलियों के शब्द अनजाने ही आ मिले। इसलिए तो दास को कहना पड़ा था, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानव, ऐसे ऐसे कवि न की बानी हूँ सो जानिए। संस्कृत और अरबी फारसी। संस्कृत की विपुल शब्दावली ब्रजभाषा को उत्तराधिकार में मिली। बिहारी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सत्सई में खूब किया है। कज्जल अद्वैतता सचिक्कन निदाख जालरंध्र श्रम स्वेदकन कलित पावस प्रथम पयोद काय प्यूह इंदिवर कलित ललित अलिपुंज कोकनद घनसार प्रतिबिंबित मकराकृत परिमल घंटावली श्रोति ब्रह्म रूप सुधा आदि शब्द सत्सई में देखे जा सकते हैं। मुसलमानों के आगमन से इस देश में जिस नवीन संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ, उससे भाषा के क्षेत्र में भी नया रंग आया। बहुत से मुसलमान राजा रईसों ने हिंदू कवियों को उदारतापूर्वक आश्रय दिया। हिंदू मुसलमान जनता आपस में इतनी घुल मिल गई है कि एक दूसरे की रीति नीति आचार विचार और भाषा संस्कृत में भी मिश्रण आ गया। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कवियों तक की भाषा में अरबी फारसी के शब्द अनायास ही आ मिले। अरबी फारसी के कुछ शब्द तो जनजीवन के अंग बन गए। समर्थ कवियों ने प्रायः इन्हीं शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। सच्चाई में प्रयुक्त अहसान, कुबत, चश्मा, जोर, बेकाम, शिकार, कबूल, निशान, हद, लगाम, नाहक, फौज, पायंदाज, मुलुक आदि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे ही शब्दों को दास ने सहज पारसी हूँ मिले कहा है, पर बहुत से अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से भी इनकी रचना अछूती नहीं है, जैसे इजाफा, बदराह, ताफ्ता, रोहाल, आमिल, सभी कोष्ठ में सभी आदि। फिर भी सत्सई में ऐसे शब्द अपेक्षाकृत कम हैं। जिस सामंती वातावरण में इनका लालन पालन हो रहा था उसमें ऐसे पांडित्य प्रकाशक शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक था। ऊपर कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा की कविता में संस्कृत और फारसी शब्दों का बाहुल्य रहा है। बिहारी ने कहीं पर अरबी फारसी के शब्दों को संस्कृत और ब्रजभाषा के व्याकरण में बांधा है, तो कहीं संस्कृत ब्रजभाषा के शब्दों को विदेशी उपसर्गों प्रत्ययों से सजाया है। नेवाज तथा नेवाजिबु, गुनाह का गुनही आदि पहले प्रकार के उदाहरण हैं, तो बेपाय और छाहकीर जैसे शब्द दूसरे प्रकार के उदाहरण। बोलियों का घालमेल। सामान्यतः ब्रजभाषा बुंदेलखंडी, अवधी और पूर्वी बोलियों से प्रभावित है। इसके कारणों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बिहारी के संबंध में तो प्रसिद्ध है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल। लड़कपन के गहरे संस्कारों को मिटा पाना संभव नहीं है। बिहारी पर बुंदेलखंडी के प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। कौन भांति रही है बिरद, अब देखबी मुरार, बीधे मोशों आनी कै गीधे गीधे हितार। उपर्युक्त दोहे में देखबी, बीधे, गीधे बुंदेलखंडी शब्द हैं। अन्य कवियों की भांति घैरु का प्रयोग भी बिहारी ने किया है, जो बुंदेलखंडी है। अवधि में भूतकालीन क्रियाओं के लध्वंत रूप खूब चलते हैं। इनमें लिंग वचन और पुरुषगत विकार की आशंका नहीं रहती। ब्रजभाषा में भी इन प्रयोगों को देखा जा सकता है। अवधि और पूर्वी के अन्य बहुत से शब्द भी ब्रजभाषा में इस तरह प्रयुक्त हुए हैं कि उन्हें सरलतापूर्वक अलग रखना कठिन हो जाता है। अवधि से प्रभावित ब्रजभाषा के कुछ नमूने देखिए। किति न गोकुल कुल बधु, काहि न किह सिख दीन, कौने तजी न कुल गली, होय मुरली सुरलीन। पियति सौ हसिकय कहो, लखें दिठौना दीन, चंद मुखी मुख चंद तय, भलो चंद समकीन। अवधि की कुछ क्रियाओं का प्रयोग भी बिहारी ने किया है। चित के हित के चुगले, नित के हो ही न नयन। इस पर रत्नाकर जी की टिप्पणी द्रष्टव्य है। हो ही का प्रयोग है के साथ अवधि भाषा में प्रचलित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हों का प्रयोग है के अर्थ में बहुतायत से किया है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और परमानंद शास्त्री ने बिहारी और उनका साहित्य में संस्कृत के स्वार्थे क प्रत्यय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अवधि में वा प्रत्यय भी स्वार्थे प्रयुक्त होता है। यह वा प्रत्यय व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी जोड़ दिया जाता है, जैसे हमीद से हमिदवा। बिहारी सत्सई में इस प्रकार का केवल एक ही उदाहरण आया है। गोरी गदकारी परे, हसत कपोलन गाड़, कैसी लसत गंवार यह, सुन की रवा की आड़। किंतु इस प्रकार के प्रत्ययों के एकाधिक उदाहरण बिहारी में मिल जाते हैं। एक ऐचत सी चितवन चितय, भई ओट अलसाय, फिर उझकन कौ मृग नयन, द्रिगन लगनिया लाय। दो लटुआ लौ प्रभु कर कहें, निगुनी गुण लपटाए, वह गुनी करते छुटे, निगुनी यह हो जाए। लगनिया का या और लटुआ का वा स्वार्थे प्रत्यय हैं। मिश्र बंधुओं ने बिहारी पर भाषा के तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत उल्लेख है। शब्दों की तोड़ मरोड़। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। दो एक स्थल पर ही स्मर के लिए समर ककय ऐसे विकृत रूप मिलेंगे, जो यह भी नहीं जानते कि संक्रांति को संक्रमण अपभ्रंश संक्रोन भी कहते हैं। अच्छ साफ के अर्थ में संस्कृत शब्द है। रोज रुलाई के अर्थ में आगरे के आसपास बोला जाता है और कबीर जायसी आदि द्वारा बराबर व्यवहित हुआ है। सोन जाई शब्द स्वर्ण जात से निकला है, जूही से कोई मतलब नहीं। संस्कृत में वारी और वार दोनों शब्द हैं और वार्द का अर्थ भी बादल है। मिलान पड़ाव या मुकाम के अर्थ में पुरानी कविता में भरा पड़ा है। चलती ब्रजभाषा में पिछानना रूप ही आता है। खटकत का बहु रूप बहुवचन में यही रहेगा। यदि पचासों शब्द उनकी समझ में न आए तो बेचारे बिहारी का क्या दोष। क्रिया के कुछ चिन्ह प्रयोग इस संबंध में रत्नाकर जी ने मुख्यतः दो क्रियाओं का उल्लेख किया है, चितई और किय का। चितई वस्तुतः ब्रज भाषा व्याकरण के अनुसार शुद्ध नहीं माना जा सकता। चितवना का भूतकालिक प्रयोग ब्रज में चितयो या चितयव होगा और अवधि में चितई, पर बिहारी ने लिखा है चितई लल चौहे चखनु डट घूंघट पटमाह छल सो चली छुआई कै छिनकु छबीली छाह। रत्नाकर जी का कहना है कि इस शब्द का प्रयोग बिहारी ने सब ठौर अकर्मक ही किया है। 144, 319, 493 तथा 623 अंकों के दोहों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है और सब में अकर्मक का ही प्रयोग है। पर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह कहते हुए कि परलखी का प्रयोग भी मौजूद है, इस प्रयोग को चिंत्य माना है। बिहारी रत्नाकर नवीन संस्करण 2 पृष्ठ संख्या 9। लेकिन इस तरह के प्रयोग पुरानी ब्रजभाषा में मिलते हैं। हौ पठई तव लेन सुधी तय रतिमानी जाए, किए का कियो के अर्थ में बिहारी ने प्रयोग किया है। रत्नाकर का कहना है कि किए शब्द का एक वचन पुलिंग रूप सामान्यतः कियो होता है, पर 42वें अंक के दोहे में बिहारी ने भी अन्य कवियों की देखा देखी किय रूप ही एक वचन पुलिंग में प्रयुक्त किया है। ऐसे प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी ने अधिकता से किए हैं। लिंग की गड़बड़ी प्रायः ब्रजभाषा के सभी कवियों में मिलती है। ब्रजभाषा में अनेक अंचलों की बोलियों के सम्मिश्रण के कारण इस प्रकार की गड़बड़ी का सन्निवेश स्वाभाविक हो गया, क्योंकि एक ही शब्द एक अंचल में एक लिंग में प्रयुक्त होता है तो दूसरे अंचल में दूसरे लिंग में। बिहारी भी इससे अछूते नहीं रह सके। रत्नाकरी टीका में इस प्रकार के कई शब्दों का निर्देश किया गया है जो लिंग की दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं माने जा सकते। रत्नाकर जी ने इस सिलसिले में उसास दोहा 138-162, बरस दोहा 260, मिठास दोहा 223, रुख दोहा 364, पल दोहा 589, बकवास दोहा 637, वाय दोहा 292 आदि शब्दों की लिंग संबंधी त्रुटियों का उल्लेख किया है। इसमें से कुछ का प्रयोग उन्होंने त्रुटिपूर्ण स्वीकार कर लिया है और कुछ को परंपरा से प्राप्त बतलाया है। उसास शब्द को ही लें, रत्नाकर जी का कहना है भाषा के कवियों ने इस शब्द को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयुक्त किया है। बिहारी ने भी इसका दोनों प्रकार से प्रयोग किया है। इस दोहे के अतिरिक्त सत्तई के और 8 दोहों में यह शब्द आया है। 262, 334, 449, 487, 507, 534, 553 तथा 660 अंकों के दोहे द्रष्टव्य हैं। इनमें से कई दोहों में इसका स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है और कई में पुल्लिंग प्रयोग। बरस शब्द के संबंध में उनका कहना है कि इसे उन्होंने स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया है। ब्रज की बोलचाल की भाषा में इसका स्त्रीलिंग प्रयोग सुनने में आता है, पर कविता में इसका प्रयोग पुल्लिंग में ही हुआ है। मिठास सामान्यतः स्त्रीलिंग माना जाता है, पर बिहारी ने इसका प्रयोग पुलिंगवत किया। 473वें दोहे इसके साथ दयव तथा कितव शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि वे इसे पुलिंग मानते थे। रुख का प्रयोग बिहारी ने स्त्रीलिंग में किया है। दोहा 216, 243, 364 और 415। यह फारसी का शब्द है जो वहां स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, किंतु भाषा में इसके दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। बिहारी ने इसको स्त्रीलिंग मानकर कम से कम एक रूपता की रक्षा की है। पल का प्रयोग संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन्होंने पुलिंगवत किया है, जबकि भाषा में पल और पलक का स्त्रीलिंग प्रयोग होता है। बकवाद दोहा संख्या 637 पर अपने विचार प्रकट करते हुए रत्नाकर जी ने लिखा है, बकवाद शब्द का प्रयोग यहाँ बिहारी ने पुलिंगवत किया है। यह शब्द वाक्यवाद से बना है। संस्कृत में यह शब्द पुलिंगवत ही होता है, पर भाषा में स्त्रीलिंग माना जाता है। रत्नाकर जी ने बकवाद को उकारांत मानकर इसे पुलिंग मान लिया है। यदि इसे अकारांत ही माना जाए और संस्कृत के वाक्यवाद अपभ्रंश रूप से इसकी संगति न बैठाकर फारसी के बकवास से बिठाई जाए तो द्राविड प्राणायाम की आवश्यकता न पड़े। जब सत्सई में अरबी फारसी के साधारण असाधारण शब्द भरे पड़े हैं तो इसे फारसी के बकवास का ही एक रूप क्यों न माना जाए। फारसी में बकवास स्त्रीलिंगवत ही प्रयुक्त होता है। इस दोहे में उकारांत न होने पर इसे स्त्रीलिंग मान लेने पर क्या आपत्ति हो सकती है। अब आइए वायु शब्द पर विचार करें। रत्नाकर जी का कहना है कि इस दोहे में बिहारी ने वायु शब्द का स्त्रीलिंग प्रयोग किया है, पर इसके पहले के दोहे में वायु शब्द को पुल्लिंग माना है। भाषा में वायु शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों ही रीति से प्रयुक्त होता है। यहाँ पर दोनों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। एक, लपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद आवती नारी नओढ़ लौ सुखद बाय गतिमंद। दो, चुवत स्वेद मकरंद कन तरु तरु तर विप्रमाय आवत दक्षिण देश ते थके बटो ही बाय। कहना न होगा कि उदाहरण संख्या एक में बाय का स्त्रीलिंग प्रयोग है और उदाहरण संख्या दो में बाय का पुल्लिंग प्रयोग है। पहले उदाहरण में बाय प्रस्तुत है और नारी नौढ़ अप्रस्तुत। इसमें बाय का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही हुआ है। दूसरे उदाहरण में प्रस्तुत अप्रस्तुत में लिंग वचन साम्य के स्थापनार्थ वायु का पुल्लिंग प्रयोग हुआ है। कुछ कुशल कवियों ने उपमालंकार में लिंग वचन साम्य के साथ साथ व्याकरण की भी रक्षा कर ली है। तम प्राप्य सर्वावयवान्वद्यम व्यावर्तान्यापगमात् कुमारी नहि प्रफुल्लम सहकारमेत्य वृक्षांतरम कांक्षति षट्पदाली कालिदास रघुवंश। इसमें उपमेय कुमारी है और उपमान षट्पदाली। लिंग वचन साम्य के लिए षट्पद का षट्पदाली कर दिया गया है। अपनी कतिपय त्रुटियों के बावजूद बिहारी की भाषा पर निश्चित ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा के व्याकरण सम्मत नियमों का निर्धारण करने के लिए रत्नाकर जी ने सत्सई की भाषा को प्रतिमान माना है। बिहारी की भाषा को दृष्टि में रखते हुए स्वयं रत्नाकर जी की काव्य भाषा का अध्ययन रोचक विषय होगा। बिहारी की भाषा की श्रेष्ठता का बोध पुराने कवियों को भी था। संबत 1743 में कुलपत मिश्र ने युक्ति तरंगणी में साफ लिखा है, भांति भांति रचना सरस देव गिरा ज्यों व्यास त्यों भाषा सब कविन मैं विमल बिहारी दास।